संबंध, जिसके पास योग का बल होता है और जिसका प्राणों पर अधिकार होता है उसको तो निर्गुण निराकार की प्राप्ति हो जाती है, परंतु दीर्घकालीन अभ्यास साध्य होने से ये बात सबके लिए कठिन पड़ती है। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में अपनी अर्थात सगुण साकार की सुगमता पूर्वक प्राप्ति की बात कहते हैं। अनन्यचेताः सततम् यो माम् स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे पृथानंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त होता हूं। व्याख्या। सातवें अध्याय के तीसवें श्लोक में जो सगुण साकार परमात्मा का वर्णन हुआ था उसी को यहां चौदहवें, पंद्रहवें और सोलहवें श्लोक में विस्तार से कहा गया है। अनन्य चेताः, जिसका चित्त भगवान को छोड़कर किसी भी भोग भूमि में, किसी भी ऐश्वर्य में किंचन मात्र भी नहीं जाता, जिसके अंतःकरण में भगवान के सिवाय अन्य किसी का कोई आश्रय नहीं है, महत्व नहीं है, वह पुरुष अनन्य चित्त वाला है। जैसे पतिव्रता स्त्री का पति का ही व्रत नियम रहता है, पति के सिवाय उसके मन में अन्य किसी भी पुरुष का राग पूर्वक चिंतन कभी होता ही नहीं, शिष्य गुरु के और सुपुत्र माँ बाप के परायण रहता है, उनका दूसरा कोई इष्ट नहीं होता, इसी तरह से भक्त भगवान के परायण होता है। यहाँ अनन्य चेता पद सगुण उपासना करने वालों का वाचक है। सगुण उपासना में विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य आदि जो भगवान के स्वरूप है, उनमें से जिस स्वरूप की उपासना करता है उसी स्वरूप का चिंतन हो, परंतु दूसरे स्वरूपों को अपने इष्ट से अलग न माने और अपने आप को भी अपने इष्ट के सिवाय किसी और का न माने तो उसका अन्य की तरफ मन नहीं जाता। तात्पर्य यह हुआ कि मैं केवल भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं, मेरा और कोई नहीं है तथा मैं और किसी का नहीं हूं, ऐसा भाव होने से वह अनन्य चेता हो जाता है। सततम योमाम स्मरति नित्यशः, सततम का अर्थ होता है निरंतर, अर्थात जब से नींद खुले तब से लेकर गाढ़ नींद आने तक जो मेरा स्मरण करता है। और नित्यशः का अर्थ है कि सदा, अर्थात इस बात को जिस दिन से पकड़ा उस दिन से लेकर मृत्यु तक जो मेरा स्मरण करता है। तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगी न, ऐसे नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ होता हूं। यहां नित्य युक्त पद चित्त के द्वारा निरंतर चिंतन करने वाले का वाचक नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से खुद भगवान में लगने वाले का वाचक है। जैसे कोई ब्राह्मण अपने ब्राह्मण पने में स्थित रहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय वेश्या आदि नहीं हूं, वह अपने ब्राह्मण पने को याद करे न करे पर उसके ब्राह्मण पने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस नित्य संबंध में दृढ़ रहने वाला ही नित्य युक्त है। ऐसे नित्य युक्त योगी को भगवान सुगमता से मिल जाते हैं। भगवान के सिवाय शरीर इंद्रियां प्राण मन बुद्धि अपने नहीं है, केवल भगवान ही अपने हैं। ऐसा दृढ़ता से मानने पर भगवान सुलभ हो जाते हैं, परंतु शरीर आदि को अपना मानते रहने से भगवान सुलभ नहीं होते। भगवान के साथ अपनी भिन्नता तथा संसार के साथ अपनी एकता कभी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। इस रीति से मनुष्य की भगवान के साथ स्वतः स्वाभाविक अभिन्नता है और संसार के साथ स्वतः स्वाभाविक भिन्नता है, परंतु भूल के कारण मनुष्य अपने को भगवान से और भगवान को अपने से अलग मान लेता है तथा अपने को शरीर का तथा शरीर को अपना मान लेता है। इस विपरीत धारणा के कारण ही यह मनुष्य जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। जब यह विपरीत धारणा सर्वथा मिट जाती है तब भगवान स्वतः सुलभ हो जाते हैं। 8वें से 13वें श्लोक तक सगुण निराकार और निर्गुण निराकार का स्मरण बताया गया। इन दोनों स्मरणों में प्राणायाम की मुख्यता रहती है, जिसको सिद्ध करना कठिन है। अंतकाल जैसी विकट अवस्था में भी प्राणायाम के बल से प्राणों को भ्रुवों के मध्य में स्थापित कर सके अथवा मूर्धा माने 10वें द्वार में ले जा सके, ऐसा प्राणों पर अधिकार रहने की आवश्यकता है। परंतु भगवान के स्मरण में यह कठिनता नहीं है, क्योंकि यहां प्राणों का ख्याल नहीं है। यहां तो भगवान के साथ साधक का स्वयं का अनादि काल से स्वतः सिद्ध संबंध है। इस संबंध में इंद्रियां मन बुद्धि प्राण आदि की भी जरूरत नहीं है, अतः इसमें अंतकाल में प्राण आदि को लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी वस्तु का बीमा होने पर वस्तु के बिगड़ने टूटने फूटने की चिंता नहीं रहती, ऐसे ही शरीर इंद्रियां मन बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के अर्पित कर देने पर साधक को अपनी गति के विषय में कभी किंचन मात्र भी चिंता नहीं होती, कारण कि वह क्रियाजन्य अथवा अभ्यासजन्य नहीं है। इसमें तो वास्तविक संबंध की जागृति है, अतः इसमें कठिनता का नामो निशान नहीं है। इसी से भगवान ने अपने आप को सुलभ बताया है। परिशिष्ट भाव अनन्य चेता भक्त की दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय अन्य की सत्ता न होने से उसका मन अन्य जगह है, कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, कहां जाएगा, इसलिए वह स्वतः अनन्य चित्त वाला हो जाता है। सततम योमाम स्मरति नित्यशः, एक करना होता है एक होना होता है। जो करते हैं वो क्रिया है और जो अपने आप होता है वो स्मरण है। जैसे गीता के अंत में अर्जुन ने कहा स्मृतिर्लब्धा 18:73, तो वह स्मृति क्रिया नहीं है, प्रत्युत भगवान के साथ अपने नित्य संबंध की स्वतः होने वाली स्मृति है। भगवान के स्मरण में खास हेतु उनमें अपनापन है। भगवान ही मेरे हैं और मेरे लिए हैं, इस प्रकार भगवान में अपनापन होने से स्वतः भगवान में प्रेम होता है और जिसमें प्रेम होता है उसका स्मरण अपने आप और नित्य निरंतर होता है। इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में मय्यासक्त मनः पद से अपने में आसक्ति अर्थात प्रेम होने की बात कही। तात्पर्य यह है कि केवल भगवान को ही अपना और अपने लिए मानने से साधक की भगवान में प्रियता हो जाती है। भगवान में प्रियता होने के बाद फिर भगवान का स्मरण स्वतः होता है। नित्य युक्तस्य, नित्य निरंतर भगवान के साथ जुड़ा हुआ होने से भक्त को नित्य युक्त कहा गया है। सातवें अध्याय के सत्रहवें श्लोक में तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त पदों से भी यही बात कही है। नित्य युक्तस्य पद से श्लोक के पूर्वार्ध में आई सभी बातों का समाहार हो जाता है। तस्याहम सुलभ पार्थ, भगवान ने महात्मा को तो दुर्लभ बताया है, स महात्मा सुदुर्लभ है 7:19, पर यहां अपने को सुलभ बताया है। इसका तात्पर्य है कि संसार में भगवान दुर्लभ नहीं, प्रत्युत उनके तत्व को जानकर उनकी शरण में होने वाले भक्त दुर्लभ है। कारण कि भगवान को ढूंढे तो वह सब जगह मिल जाएंगे, पर भगवान का प्यारा भक्त कहीं कहीं मिलेगा। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होए। हरि हेरिया सब जग मिले, हरिजन कहीं एक होए। भगवान कृपा करके जो मनुष्य शरीर देते हैं, उस शरीर से जीव अनेक योनियों में तथा नरकों में भी जा सकता है, परंतु भक्त कृपा करके भगवान की ही प्राप्ति कराता है। हरि से तू जनि हेत कर, कर हरिजन से हेत। हरि दीजे जग देत, हरिजन हरि ही देत। वास्तव में जो नित्य प्राप्त है उसमें सुलभता दुर्लभता कहना बनता ही नहीं है, परंतु लोगों ने उसको दुर्लभ मान रखा है। इस वृत्ति को हटाने के लिए भगवान ने अपने को सुलभ बताया है। जिसकी खुद की सत्ता है ही नहीं, उस असत शरीर संसार को सत्ता और महत्ता देने से तथा उसके साथ संबंध जोड़ने से ही नित्य प्राप्त परमात्मा दुर्लभ हो रहे हैं। असत को सत्ता और महत्ता न दें तो परमात्मा की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। असत है और वह अपना तथा अपने लिए है, ऐसा मानना ही असत को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ना है।